शांति ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ध्यान खिंचवाया है समय के बारे में। बाबा साकार मुरली में हम बच्चों को हमेशा इस बात के लिए पक्का कराते रहते हैं कि समय का कोई भी भरोसा नहीं है। समय तो अपनी तीव्र गति से चल रहा है और बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है। अव्यक्त बाप दादा भी हम देखते हैं अधिकतर हर एक मुरली में समय के बारे अचानक के बारे में बाबा भी हम बच्चों को बताते रहते हैं। तो आज भी बाबा ने फिर से पक्का कराया है। कई बच्चे कहते हैं आगे चल के गैलप कर लेंगे, बाबा कहते समय का कोई भरोसा है, अचानक कुछ भी हो सकता है। साकार बाबा का भी हमने सुना कि लास्ट में भी बाबा को जब कहा गया बाबा ये पत्र आदि कल लिख लेना, तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा आज ही अपना सारा कार्य पूरा करेंगे। तो बाबा को पहले से समय का बहुत ध्यान रहता था, तो आज भी बाबा ने समय के ऊपर चेतावनी, पुरुषार्थ और याद की यात्रा पर भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। और दूसरी बात, बाबा ने ड्रामा की पॉइंट को फिर से पक्का कराया है कि बच्चों को ड्रामा की पॉइंट का भी विशेष ध्यान देना है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। तो आज की तारीख है 3 फरवरी 2026। ओम शांति। आज की तारीख है 3 फरवरी 2026 और मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। मीठे बच्चे तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। आज का प्रश्न है, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार के बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। खुदाई खिदमतगार के बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे, इसका उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है। ये बात बच्चों के सामने बहुत आती है, कुछ भी काम करना होगा ना, अभी तो टाइम पड़ा, अभी थोड़ा टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है, टाइम पड़ा करते करते वो टाइम पूरा हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, जिसको बाबा हमेशा कहते हैं अचानक कुछ भी हो सकता है। तो बाबा कहते मौत का नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। कई समझते भी विनाश तो हुआ ही नहीं है, पिछाड़ी में हम पुरुषार्थ कर लेंगे, हम तो पुरुषार्थ में बहुत तेज हैं। कहानियां सुनते ना, कईयों को अहंकार होता था कि हम दौड़ने में बहुत तेज हैं और दौड़ने वाला सबसे लास्ट चला गया। तो इसलिए बाबा कहते बच्चों को ध्यान रखना है, ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, ये ख्याल आया और ही गिरा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। क्या सेवा करेंगे? रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म कर नहीं सकते हैं, पाठ बजा ही नहीं सकते। बाबा को जब तक तन नहीं है तब तक कर्म भी नहीं कर सकते, पाठ भी बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना। योग बल से सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान बनेंगे तो सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कलप कलप बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी कि मनुष्यों से देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे सो वे अब पांच बदल कर शूद्र पतित बन पड़े। मनुष्य जो देवी देवता थे वे सो बदल कर पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारस बुद्धि था तो पवित्रता सुख और शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की तो बात है, बाबा पक्का करा रहे हैं। ये सब बातें कब की हैं? बहुत थोड़े समय की है, 5000 वर्ष की तो बात है। अगर लाखों वर्ष की बात कहेंगे तो समझ ही नहीं सकेंगे। ये तो 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उसे ऊंच तो कोई है नहीं, सृष्टि व झाड़ किसको कहा जाता है, इसके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही समझा सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं के चित्र जरूर है, यादगार है। देवताओं के चित्रों को देखते हैं तो याद आता है कि हमारा ही देवी देवता धर्म था। देवताओं के चित्र जरूर हैं, ये तो भारतवासी ही जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बल शास्त्रों में भूल कर दी। कौन सी भूल? कि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर के भूले हुए को पूरा रास्ता बताते। पहले भी गाते रहते हैं, हम भूल गए हैं, हम बाबा को नहीं जानते, तो बाबा ही आकर के पूरा रास्ता बतलाते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो क्या होता है? सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। रचयिता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक है। रचयिता एक है, सृष्टि भी एक है, बताने वाला भी एक है, और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है। वह फिर रिपीट होती रहती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर होता है। कौन सा समय है फिर? क्या है बोलो? है पुरुषोत्तम संगम युग। फिर होता है पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग में है पतित और सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग का विनाश होगा। रात होगा तो दिन नहीं होगा, दिन होगा तो फिर रात नहीं होगी। तो बाबा कहते अगर सतयुग होगा तो कलयुग होगा ही नहीं, तो अथवा उसका विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होती है, सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। अब दिन को आने में पहले तो बनेगा ना, पर उस समय तो नहीं होता ना। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी, भगवान आएगा ही जब, तब दुनिया पतित है। सतयुग को ही पावन दुनिया और पतित दुनिया को पावन बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते। कौन सी युक्ति? एक तो बाबा कहते बाबा को याद करो, उसको याद करने की युक्ति है। बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं, देह के सब संबंध छोड़, देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति, क्या बताए? देह के सब संबंध छोड़ मीन्स भूल, देही अभिमानी बन बाप को याद करो। एक कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों का फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं, पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते, पूरे कल्प में नहीं आते। बाबा कहते जब दुनिया पतित हो जाती है तब आते हैं, पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं। पावन बनाने के लिए पावन बनते ही हैं योग से। बाप बिगर तो कोई पावन बना न सके। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं औरों को समझाने के। बाबा के बच्चे बने, समझ जाते हैं बाबा हमको पावन बना रहे, तो बाबा कहते ज्ञान बाबा बच्चों को क्यों देते हैं? औरों को समझाने के लिए। घर घर में संदेश देना, ऐसे नहीं कहना कि भगवान आया हुआ है। अब कई बच्चे ना जाकर के बोलते रहते हैं भगवान आया है, तो भगवान आया की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल जीवन भी चाहिए। फिर कुछ भी ऊपर नीचे किया तो लोग कहेंगे आप तो कहते थे भगवान आए हैं और अभी क्या हो गया, कहेंगे हम तो ऐसे ही कहते थे। इसलिए बाबा कहते ज्ञान दो, सोच समझ के दो जो उनकी बुद्धि में बैठे। ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो ये बाप है ना, कैसे समझाना है? वो एक है लौकिक बाप, एक है परलौकिक बाप। ये बाप है ना, एक है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सुख में कोई भी, सुख में तो कोई करते नहीं है ना, तो बाबा कहते उनको इस तरह से समझाना है। दुख के समय याद करते वो कौन है, कब तो आएगा ना, फिर उनको बताओ। ऐसे बताएंगे तो फिर वो समझेंगे नहीं। शुरू शुरू में क्या था कि बाबा के बच्चे बने, कईयों को बहुत नशा चढ़ जाता, भगवान आया हुआ है, भगवान से मिलना, माउंट आबू चलो, तो लोग हंसते थे समझते नहीं थे। अभी कहेंगे हमको माउंट आबू ले चलो, बाबा के घर ले चलो, अभी वो ये नहीं समझते कि भगवान आया है, लेकिन बाबा का घर है वहाँ बहुत अच्छा प्राप्ति होती है, अभी ले चलो। अभी उनको कहते, हम कहते जगह नहीं है, पहले वो कहते थे हमको जाना नहीं और अभी वो आना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं दुख में तो कोई याद नहीं करते हैं, सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया फिर पुकारें क्यों? जब सब कुछ मिल गया फिर क्यों पुकारें? प्राप्ति हो गई फिर क्यों बुलाए कि आओ हमें दो? बाप का वर्षा मिल गया फिर पुकारें क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए ये सृष्टि नहीं रची। बाबा दूसरी बात बताते, लोगों को समझाओ तो ये बताओ कि बाबा ने दुख के लिए ये सृष्टि नहीं रची है, हमेशा सुख के लिए रचते हैं। दुख के लिए कौन करता? रावण करता है। ये बना बनाया खेल है, जिनका पार्ट पिछाड़ी में है दो चार जन्म लेते हैं वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे, बाकी ड्रामा के खेल से निकल जाएं ये हो नहीं सकता। कोई कहता है ना पार्ट में न आए ड्रामा में खेल ही ना करे, बाबा कहते ये नहीं हो सकता। हाँ एक टाइम के लिए चलो जन्म तो आना ही पड़ेगा, लंबा समय मुक्ति में रह सकते हैं, बाकी ड्रामा के खेल से निकल जाए ये हो नहीं सकता है। वह जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे, खेल में तो सबको आना ही होगा, एक दो जन्म मिलते हैं तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पार्टधारी है ना, कोई आत्मा को ऊंच पार्ट मिला हुआ है और कोई को कम। ड्रामा में भी ऐसे होता है ना, कईयों को तो हीरो पार्ट मिला हुआ है, कईयों को कम पार्ट होता है, कईयों का बिल्कुल कम होता है। तो ऐसे ये भी ड्रामा है, कोई को ऊंच मिला हुआ है कोई को कम। ये भी अभी तुम जानते हो गाया भी जाता है, ईश्वर का अंत कोई पा नहीं सकते। भक्ति में यही गाते हैं ना कि ईश्वर को कोई जानता नहीं उसका अंत नहीं पा सकते, तो गायन है ना कि ईश्वर का अंत कोई पा नहीं सकते। बाप ही आकर के अंत देते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। बाबा आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान देते हैं। जब तक रचयिता खुद न आए तब तक रचता और रचना को कोई जान नहीं सकते। बाप ही आकर के बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जान। अब जिसमें तन में प्रवेश किया उनको थोड़ी पता है कि मैं क्या था, जब बाबा ने बताया तब जाना। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते, उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता। उसको कुछ भी पता नहीं है तो बाबा कहते उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज हो नहीं सकता। ब्राह्मण भी क्या कहते हैं, कई बार ब्राह्मण बहुत मस्ती करते हैं, हम देर से क्यों आए, हमने साकार बाबा को क्यों नहीं देखा। अरे बाबा तो आपको देख रहे हैं, आप क्यों नहीं देखते हो। बाबा बुलाते हैं, बाबा गोदी में बिठाते हैं, बाबा हाथ पकड़ करके चलते हैं, बाबा प्यार करते हैं, वो लेंगे नहीं। फिर बाबा को बोलेंगे हमने बाबा को क्यों नहीं देखा। छोटे बच्चे होंगे ना, अरे वो तो बाप का हाथ छोड़ता ही नहीं है, तो आप तो लक्की हैं छोटे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई कहे हमारा पार्ट ना हो चेंज हो जाए वो भी नहीं हो सकता। अब संगम युग पर बहने के हम भाई हो जाएं हो ही नहीं सकता। भाइयों को होते हम बहने होते तो हम सेंट्रल संभालते हैं, किसी भाई को कि हम बहन होते ये देखो आपको वैसे ही सेंटर मिल जाएगा सेवा करो है। जरूर थोड़ी बहन बन के सेंटर संभालना, भाई बन के सेवा करो, सेवा करना मीन सेंटर संभालना। तो बाबा कहते हैं ये भी बच्चे खेल करते हैं बाबा से है। बाबा कहते करो तो सही, वैसा बनो तो सही, फिर बाबा आपको भी जिम्मेवारी दे देंगे। तो बाबा मुस्कुराते हैं, कोई के पार्ट में चेंज हो नहीं सकता, ये बना बनाया खेल है, ये भी कहा किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अब बुद्धि इधर उधर घूमती रहेगी सुनते रहेंगे, बुद्धि में थोड़ी बैठेगा। बाबा कहते हैं बुद्धि में तब बैठेगा जब बुद्धि स्वच्छ होकर के बैठेंगे। यहाँ भी बैठे बैठे बुद्धि इधर घूमी उधर घूमी तो पॉइंट खिसक जाती है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे, अच्छी रीत समझने के लिए 7 रोज बट्टी है। आप सबको मालूम है ना, शुरू में कोई भी आते थे बाबा कहते थे इनको 7 रोज बट्टी में रखो। फिर बट्टी में रखते थे, फिर उनसे पूछते थे कि कैसे रहा, कोई ख्याल आया, कहेंगे हाँ बाबा। बाबा कहेंगे फिर 7 दिन। फिर कहेगा बाबा फिर नई अवस्था बनी, बाबा कहेंगे फिर 7 दिन। तो अभी कोर्स जो कराते कितने दिन का, सात दिन का, तो सात दिन का कोर्स पूरा हुआ या नहीं हुआ? अभी तक चल रहा है ना सात दिन का कोर्स, क्योंकि संपन्न ही नहीं बने हैं। तो बाबा कहते संपन्न बनना है तो फिर क्या करना होगा? अच्छी ही समझने के लिए सात रोज बट्टी है, भागवत आदि भी सात दिन रखते। भक्ति में जो गायन होता है कहाँ का है, किसको कॉपी किया है, तुम बच्चों को कॉपी किया, तो भागवत आदि भी सात दिन रखते हैं। यहाँ भी समझ में आता है कम से कम सात दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने क्या बताया, कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई तो सात रोज समझ करके भी कुछ नहीं समझते। फिर उनको कहते फिर से सात रोज का कोर्स करो। कोई कोई तो सात रोज समझ करके भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं है, कह देते हैं हम तो सात रोज आया। कई आते हैं बोलते हम सात रोज आया था, थोड़ा सुना था, कुछ समझ में आया, फिर चला गया। फिर आते हैं फिर से दोबारा उनको कोर्स करना पड़ता है। कह देते हैं हम तो सात रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं, ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं राज। यहाँ भी कहते हैं ना बाबा कहते हर प्रकार के, कोई ऊंच पद पाने वाले झट उसकी बुद्धि में बैठेगा, ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसे ही बनती है, प्रजा बननी है। बाबा कहते प्रजा तो बनेगी ना, कोई सब थोड़ी राजा बन जाए, प्रजा तो ऐसे बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है, बाप को याद करने से ही वे कर्म विनाश होते हैं। अब करो ना करो, अब बाबा कहते याद करो तो विकर्म विनाश होते हैं, अब तुम करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। फिर नहीं कहना ये क्या हुआ हमारे, क्यों नहीं विकर्म विनाश हुए? बाबा कहते मैंने तो युक्ति बता दी थी, अब करो ना करो। परंतु बाप का डायरेक्शन ये है कि प्यारी बस्ती को याद किया जाता। वैसे भी लौकिक में क्या होता है, कोई अच्छी चीज होती है उसको याद करते हैं, प्यारी वस्तु को याद किया जाता है। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, अब ये वह मिला है तो कहते हैं मुझे याद। भक्ति मार्ग में याद किया पुकारा, और बाबा जब मिला तो उनको भूल जाते, फिर बाबा को कहना पड़ता जब मिला है तो उसे याद करो। अब वह मिला है कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, बादशाही शायद थोड़ी मिल जाएगी, कुछ तो मेहनत होगी ना। बादशाही लेना ऐसे थोड़ी मिल जाएगी बैठो और मिल जाए, कोई भी चीज प्राप्त करनी होती है भाग्य में होता है, लेकिन मेहनत तो करना पड़ता है ना। तो बाबा कहते बादशाही शायद थोड़ी ऐसे मिल जाएगी, कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, याद में ही मेहनत है, मुख्य है याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, पूरा ना याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्मा जीत बनना है, आगे भी योग बल से विकर्मों को जीता था। बाबा याद करा रहे हैं कि कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी वही करना है, आगे भी योग बल से विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं। अब बाबा कहते कैसे बने, योग बल से बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है कि ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवानो वाचे, भूले तो होती ही रहती है। शास्त्रों में भी कई भूले कर दी हैं, और बच्चों से पुरुषार्थ में भी भूले होती है ना। बाप ही आकर के क्या बनाते हैं, बाप ही आकर के अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसी को भी पता नहीं, क्या किया सब मिक्स कर दिया, बातों को भूल गए। बाबा इसलिए कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं, जिनों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाए। किसको कहा था है ये बातें बाबा ने किसको कही थी है, किसको? श्री कृष्ण को। किसको कहा था? हाँ कहते अरे बोलो ना, हमको कहा था, भूल गए क्या? बाबा ने किसको कहा था? आपको सुना, कोई बाहर वाले को सुनाया क्या? किसको कहा था? हाँ हम बच्चों को, खुशी से बोलो, हमने ही पद पाया था, है ना? जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, तुम ही चक्कर लगाकर आए हो। पूरे कल्प का चक्कर लगाए ना, तुम ही चक्कर लगाकर आए हो। कल्प पहले भी जिन्होंने सुना था वही सुनेंगे। अच्छा कौन है कल्प पहले वाले हैं? सुनने वाले कौन है? मैं ना, हमने सुना था या कोई और ने सुना था? और भी सुनने वाले हैं क्या? बोलो ना, और भी आएंगे हैं, और भी आएंगे हैं। कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने के। कौन सी सैपलिंग? कौन से झाड़ की? मनुष्य को देवता बनाने की वो लगाते हैं। कौन से पेड़ की? अलग अलग पेड़ों के लगाते हैं, वो भी लगाना है। लेकिन हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने की। ये है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों की सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर के कॉन्ट्रास्ट बताते, वह झाड़ है कभी आम का है, कभी जामुन का है, कभी नीम का है, कभी पता नहीं कितने झाड़ है, करोड़ों। वो भी सैपलिंग लगाते, वो भी जरूरी है। नेचर भी प्योर चाहिए ना, प्रकृति भी सतो प्रधान चाहिए। और लेकिन बाबा कहते प्रकृति सतो प्रधान तब होगी जब दैवी झाड़ का सैपलिंग होगा, दैवी झाड़ बढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं, तो बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते, बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते। वो तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते, जंगल में भी करते हैं, जंगल भी चाहिए। तुम दिखाते भी हो ना, कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, उनके क्या क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स है। उनके तो कितने प्लान है, ये करेंगे, 5 साल में ये कर देंगे, 10 साल में ये हो जाएगा। और बाबा कहते तुम बच्चों के, बाबा के क्या प्लान है, हम नई दुनिया बना देंगे। है उनके क्या प्लान है, वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े ही नहीं, फैमिली प्लानिंग करें जो मनुष्य जासी ना बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते। भारत में बीच में ऐसा हुआ था, बहुत जनसंख्या थी और गरीबी थी, तो फैमिली प्लानिंग का हुआ। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, वो जो प्लान बनाते हैं प्रैक्टिकल तो होते नहीं हैं, उनके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे, एक की देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते। और कौन सी फैमिली होगी? देवी देवता धर्म की। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज नहीं थी। भारत में देखो कितनी फैमिली है, गिनती तो करो कितनी। गुजराती फैमिली है, मराठी है, पता नहीं कहाँ कहाँ के, आसाम के हैं, कहाँ कहाँ के बोलते हैं, तो फैमिली है ना। लेकिन फिर क्या करते हैं, अनेक फैमिलीज होती हैं आपस में, फिर मेरा तेरा हो जाता है। तो बाबा कहते भारत में कितनी फैमिलीज हैं, गुजराती फैमिली, आप गुजरात के बैठे होंगे ना, तो अभी गुजरात का टर्न था, जो नीचे से हाथ खड़ा करो, देखो अभी साहब गुजरात के आए अभी एक रात के लिए, गुजराती फैमिलीज महाराष्ट्रियन फैमिली वास्तव में भारतवासियों की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट ही होगी, है ना। बहुत होंगे तो क्या करेंगे, टुक टुक करते ही रहेंगे, बैठेंगे ना कहाँ पर, ढेर होंगे कुछ कुछ पुर पुर करते ही रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट ही रहेगी, फिर सिविल वार हो जाती, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा ये मेरा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है, तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर सिविल वॉर हो जाती है, फैमिलीज में भी सिविल वॉर हो जाती है। घर में दो होंगे तो शांति से चलेंगे, ज्यादा होंगे तो फिर प्रॉपर्टी के लिए छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा हो जाता है, फैमिलीज में भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली, अब आप देखो बाबा पहले ही बताया था उस समय तो दोनों मिले हुए थे, अभी क्या है दोनों एक ही फैमिली है लेकिन दोनों एक दूसरे को आंख दिखाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है उनकी भी आपस में लगती है, आपस में दो भाई नहीं मिलते, है ना, झाड़ में दिखाया है दो बिल्ली दिखाए ना, आपस में लड़ेंगे तो माखन कौन खाएगा, है माखन कौन खाएगा, ब्राह्मण खाएंगे बंदर नहीं। कहानी सुनाते ना, दो बिल्ले लड़े माखन बंदर खा गया, ये बंदर नहीं है, है और कौन है, ब्राह्मण है, है ना, ठीक है ना। तो ब्राह्मणों को उन्होंने बंदर कह दिया है ना, तो ब्राह्मण ही खा जाते हैं माखन। तो बाबा कहते हैं आपस में दो भाई नहीं मिलते, जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली उनकी भी आपस में लगती है, आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दें, रग जाती है तो माथा मारते रहते, होता ना हमारे इधर शहर में नदी है उधर नहीं जानी चाहिए, उधर पानी आ रहा उधर को बंद कर देते, लड़ते फिर समझौता करते रहते। तो बाबा कहते हैं रग जाती तो माथा मारते, हम समझेंगे कि अंत है तो अंत होती है तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती। बाबा ने बताया जब अंत होने का टाइम होता है सिविल वार भी होगा, नेचुरल क्लेमिटीज भी होंगे, बहुत कुछ होगा। जब अंत होती है तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती है, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, विनाश तो होना ही है, बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें दो बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। आपको पता है ना पहले पहले बॉम्ब्स बनाए थे बहुत सिंपल थे, छोटे से थे, जापान पे दो बॉम्ब्स डाले थे और वो बॉम्ब्स इतने पावरफुल थे आज भी उसका असर है उस धरनी पर। और वो उस समय के जो बच्चे थे आज जो बुजुर्ग हो गए उनके शरीर के ऊपर भी इतना असर है। तो बाबा कहते जब दो बॉम्ब बनाए थे उसका कितना बड़ा था, अब तो इतने पावरफुल बनाए बाकी तो कोई बचेगा नहीं, अगर छोड़ दिए या छूट गए तो कितना नुकसान होगा। तो बाबा कहते बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं, बड़ी लड़ाई जब लगी थी उसमें दो बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं, समझ की बात है ना, तुमको समझाना है ये लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी हैं कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया गया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। बीच बीच में बहुत लड़ाइयां लगती रही और उनको बीच बीच में शांति करा के बंद कराते ताकि अगर कोई भी लड़ाई लग जाए तो फिर तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और अभी तो वो दृश्य फिर से दिखाई दे रहे, एक दूसरे को आंख दिखाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। आग तो लगनी ही है, ये भी तुम जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का, राजयोग है पावन बनने के लिए, राजयोग है ही सतयुग का। ये देवी देवता धर्म अब प्राय लोप हो गया। राजयोग है ही सतयुग का, ये देवी देवता धर्म अब प्राय लोप है। चित्र भी बने हुए हैं। बाप कहते हैं कलप पहले मुआफिक जो विघ्न पढ़ने होंगे वह पढ़ेंगे। क्यों बाबा ने कहा? बच्चे जो है ना विघ्नों से डरते, बाबा ये विघ्न क्यों आया? बाबा कहते कलप पहले हुआ था, अभी भी आए। जब ये शुरू शुरू में चित्र बनाए थे, कहीं प्रदर्शनी लगाते थे तो लोग बहुत बहस करते थे, बहुत विघ्न डालते थे। बाबा बच्चों को हमेशा कहते थे बच्चे निडर रहो, ये विघ्न तो कलप पहले भी पड़े हैं, अभी भी पड़े हैं, फिर भी पड़ेंगे। तो बाबा कहते कलप पहले ऐसा हुआ था, पहले पता थोड़ी था, फिर समझा जाता है कि कलप पहले भी ऐसा हुआ होगा। ये बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा में हम सब बंधे हुए हैं ना, बंधे हुए ना ड्रामा के अंदर। जो ड्रामा का सीन है वही तो करना है। अभी फिल्म बनाते हैं, कोई ड्रामा करते हैं, सीन जो प्रस्तुत करना उसको छोड़ के दूसरा करेंगे तो उसको क्या करेंगे? ड्रामा से निकाल देंगे। यहाँ दूसरा करेंगे वो भी ड्रामा में बंधा हुआ, उनको समझाओ ऐसा करो उल्टा करेगा तो ये भी ड्रामा में बंधा हुआ। तो बाबा कहते हैं तो कलप पहले भी ऐसा हुआ होगा, ये बना बनाया हुआ ड्रामा है, ड्रामा में हम सब बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है, इसको परीक्षा कहा जाता है। हमारी परीक्षा कौन सी है? है बोलो, लिखने में कौन सी आएगी? स्कूलों में परीक्षा होती है, राइटिंग में भी होती है और प्रैक्टिकल भी होती है। तो प्रैक्टिकल परीक्षा कौन सी है? कौन सी है परीक्षा पता नहीं है? हमारी परीक्षा है याद की यात्रा, ये है प्रैक्टिकल। थ्योरी तो बहुत कर लेंगे है ना, मुरली पॉइंट लिख लेंगे, याद कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, वो भी करना है, लेकिन प्रैक्टिकल परीक्षा। स्कूलों में भी जाओ ना, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, फिर साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है। तो आज पक्का करो कौन सी परीक्षा है, पेपर कौन सा है, पेपर कौन सा है, हैं? लास्ट में पेपर कौन सा आएगा? हैं? याद की यात्रा में नष्ट हुआ है ना, ठीक है। तो बाबा कहते हैं इसको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, कई तो थक जाते हैं। गीत है ना, फिर बाबा बच्चों को आथत देते हैं, कौन सा? रात के राही थक मत जाना है, सुबह की मंजिल दूर नहीं, याद है गीत है ना, रात के राही। इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके, ये है याद की यात्रा। जिससे रात पूरी हो दिन आ जाएगा, आधा कलप पूरा हो फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ समझाया है, बाबा ही मन मना भव का अर्थ समझाते हैं। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है, गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं, भारत खास और दुनिया आम। बाबा भी क्या कहते हैं, भारत खास दुनिया आम। इसमें बाबा के साथ हम बच्चे भी सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, सबका श्रीमत पर हम कल्याण करें, सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे उनको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। देखो कल्याण कैसे करेंगे? याद की यात्रा से। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। अभी तुमको समझाया जाता है, वह तो बेहद का बाप है, बाप से वर्षा मिला था। याद है बाप से क्या मिला था, कौन सा वर्षा मिला था, बोलो बेहद का है, बेहद का वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। जो 84 जन्म वाले हाथ खड़ा करे हैं, अच्छा जो कम लेना चाहते वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। कम लेने वाले हाथ खड़ा करो, नहीं कोई नहीं ना, अच्छा ठीक है, पक्का है ना, हैं श्री कृष्ण की राजधानी में आएंगे। अच्छा जो माताएं श्री कृष्ण को झूला झुलाएंगी वो हाथ खड़ा करो, हैं झूला झुलाएंगी, देख रही है, झूला झुलाना अच्छा लगता है कि नहीं, श्री कृष्ण को देखेंगे ना छोड़ेंगे नहीं। अब वहां तो माताओं को ध्यान रखना पड़ेगा है ना, तो लेकिन जाना जरूर है। तो बाबा कहते हैं, तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए, पुनर्जन्म का भी हिसाब है ना, कोई समझते नहीं कि हम 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं, गीता वही टीकाएं अनेक लिख दिए, एक ही शुरू में द्वापर में केवल एक ही गीता, फिर उसके बाद बनते बनते कितनी गीताएं बन गई, अभी पता नहीं इतना उसको गीताओं के नाम है, उसको पढ़ते जाओ जितने श्लोक होंगे उतनी तो गीताओं के नाम भी हो जाएंगे। तो कितनी टीकाएं उसके ऊपर, बहुत रिसर्च है, रिसर्च के आधार से वो नाम लिख दिया है। तो बाबा कहते हैं गीता वही टीकाएं अनेक लिख दी हैं, गीता से तो भागवत बड़ा कर दी। बाबा के टाइम पर बाबा के पास एक छोटी सी गीता थी, इतनी सी, जो लॉकेट के अंदर डालते थे, फिर धीरे धीरे बड़ी बनती बनती कितनी बन गई हैं, फिर भागवत तो बड़ा क्यों कर दिया, उसमें बहुत रोचक कहानियां, कितनी कहानियां, गीता में ज्ञान है उसमें केवल कहानियां ही कहानियां, रोचक सुनते रहते हैं और कर्ण रस मिलता रहता है। तो बाबा कहते गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया, गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी, ये गीता तो आधे घंटे में पढ़ लेते हैं, अभी तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आए हो। अब गीता का एक अध्याय पढ़ लेंगे आधे घंटे में, बाबा कहते ये ज्ञान पूरा कल्प तो क्या, लेकिन पूरा संगम युग सुनते ही आते हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। शुरू शुरू में बाबा को बताते थे, बाबा इतनी सेवा करते कोई आता ही नहीं है। बाबा ने बच्चों को कहा आपको पता नहीं ड्रामा का राज क्या है, तुम थोड़े बच्चे जो अधिकार लेना ले लो, बाद में आने वाले वो आपका हिस्सा बांट देंगे, इसलिए नहीं आते तो कोई बात नहीं, आए तो अच्छा है, ना आए तो और अच्छा है। अभी भी ऐसे है जो आ रहे हैं थोड़ा बहुत राज्य लेते हैं। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे आएंगे, अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं तो फिर देरी ना लगे। अब राजाएं आ जाएं तो कहेंगे हम ही सब कुछ हैं। तो बाबा कहते हैं झट आवाज निकल जाए, इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है, ये है गुप्त ज्ञान। शुरू में बाबा ने पक्का ही कराया था, पहले धीरे बच्चे अच्छे मजबूत हो जाएं, बाद में आने वाले तो उनको कणा दाना मिलेगा, अब इसके बाद आने वालों को क्या होगा, कणा दाना से भी टुकड़ा ही मिलेगा, फिर लास्ट में दर्शन मिलेगा और तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो बाबा कहते धीरे धीरे चलता रहता है, ये है ही गुप्त ज्ञान, किसका भी पता नहीं, किसको भी ये पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे चलती है ना, दिन रात युद्ध है, दिन रात, रात को भी युद्ध करते हैं ना, उठेंगे करेंगे फिर कहेंगे क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे होती है ये तो तुम ही जानो और कोई जान ना सके। भगवानों वाच तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। तुम लिखते भी हो हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। प्रतिज्ञा करते ना हम शिव शक्ति पांडव सेने, है ना, क्या बोलते हैं, शिव शक्ति पांडव सेना श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले पहले 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारणा होगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा, अब बच्चों के लिए बाबा क्या कह रहे, कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, जिसको बाबा हमेशा क्या कहते हैं, अचानक का पार्ट है, बाबा बार बार कहते परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल मर जाए तो कल कल करते मर जाएंगे, है ना, कहते ना भक्ति में भी कहते हैं कल कल करते काल खा जाएगा, है, तो बाबा कहते हैं कल मर जाए तो कल कल करते मर जाएंगे, ये ख्याल और ही गिरा देंगे। अवस्था को कमजोर करने का कौन सा ख्याल, कल कर लेंगे, अभी थोड़ी करे, थोड़ी देर में कर लेंगे, तो बाबा कहते फिर कोई टाइम का भरोसा, ये ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो, श्रीमत पर हरेक को, श्रीमत पर हरेक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है, कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ, जांच में कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ, खुद रूहानी खुदाई खिदमत गार तुम होना। पहले बाबा ने कहा सेल्वेज करते हो तो क्या हुए, सेल्वेशन आर्मी, तो अभी दूसरा रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम ही हो, तुम रूहों को सेल्वेस करते हो, रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियां बताते हो। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट है, ये है बेहद की बात। अब एक को कही ऐसा है वो वैसा है, बाबा के तैयारे का पार्ट है, यहाँ भी बेहद में भी ऐसा है, ये है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियां ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। अब किसी पेड़ की ब्रांचेस भी क्या करेंगे, मुख्य मुख्य मोटी मोटी ब्रांचेस को गिनेंगे ना, छोटी छोटी ब्रांचेस भी बहुत होते हैं, फिर उसमें पत्ते भी बहुत है, गिनती करते जाओ उसका कोई अंत नहीं, आज गिना शाम तक गिर जाएगा, गिनते गिनते ही वो गिर जाएगा। तो बाबा कहते हैं बाकी तो पत्ते अनेक हैं, बाप समझाते रहते हैं बच्चे मेहनत करो, सबका बाप का सबको, बाबा कहते हैं बाप समझाते रहते हैं बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे, बाबा क्या कहते हैं सबको यही ज्ञान दो, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा, किसी को पता नहीं है, दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा, ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है, क्यों, क्योंकि नई दुनिया चाहिए, हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा, फिर नई दुनिया हो जाएगी। बाबा कहते हैं हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा पहला। ये बना बनाया ड्रामा है इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे कि याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। दूसरा, परलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पवित्र बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। आज का वरदान, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त भाव। मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भाव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तब कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। सेवा में सफलता की अनुभूति कब होगी? जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने ये सेवा की, इस सेवा भाव का भी त्याग। मैं का भी, सेवा भाव का भी त्याग। मैंने नहीं की लेकिन मैं करण हार हूँ, करण करावन हार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित है। सेवा में मैंपन मिक्स होना, सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। कहेंगे ना, मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई मदद नहीं करता, मैं क्या करूँ, मेरे को मदद करनी चाहिए, मैं इतना कर रहा हूँ, तो बाबा कहते मोहताज बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। अव्यक्त इशारे, अभी जो टाइटल चल रहा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। स्लोगन फिर से बताती हूँ, फिर से अव्यक्त इशारा का जो टाइटल है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। एकता के लिए समाने की शक्ति तब तो आएगी ना, ये तो सारा टाइम बोलते रहेंगे वर्णन करते रहेंगे तो एकता नहीं होगी। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इसमें दूसरे का संस्कार भी अवश्य ही शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। उन्हें नई राह मिल जाए, उन्हें नई राह मिल जाएगी। अच्छा ओम शांति, सभी बैठे रहेंगे, एक दो सूचनाएं वो सुन के जाएंगे। एक तो आवश्यक सूचना है कि बाबा के कमरे के पीछे पार्किंग के लिए वहां पर कई स्कूटर रखे हुए हैं, उनसे निवेदन है जिन्होंने उन्हें रखा है कि वहां से स्कूटर हटाकर अन्य स्थान पर रखें, क्योंकि पीछे का गेट को बंद किया है ना, आप सबको मालूम है पीछे कारोबार चल रहा है, पीछे का गेट बंद किया क्योंकि पीछे का गेट बंद होने के कारण सब्जी पांडव वन, सब्जी वाला जो ट्रक है वो पांडव वन में नहीं आ सकता। सब्जी वाला ट्रक नहीं आएगा तो सब्जी नहीं मिलेगी, फिर क्या सूखी रोटी खाएंगे हैं, फिर इसलिए क्या करना है। तो बाबा के बता रहे सूचना है कि पीछे के गेट बंद होने के कारण सब्जी वाले ट्रक पांडव वन में आ नहीं सकता है, वो आगे के गेट से आ जाएगा। दोपहिया वाहन में स्कूटर जो है उनके पार्क होने से तो बाबा के कमरे के पीछे गाड़ी जा नहीं सकती है, इसलिए वहां से हटाएंगे तब वो सब्जी वाला ट्रक आ सकेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि स्कूटर जो इन्होंने रखी है उसको वहां से हटा के दूसरे स्थान या कहीं और स्थान पे खड़ा करें। और आप सबको मालूम है कि अभी फरवरी महीने में शिव जयंती का प्रोग्राम भी आ गया है, अभी शिव जयंती प्यारे बाबा के झंडा रोहण के भिन्न भिन्न स्थानों के कार्यक्रम भी आ चुके। पहला प्रोग्राम कल 4 तारीख पीस पार्क में झंडा लहराया जाएगा। उस झंडे के लिए मधुबन निवासी, हॉस्पिटल निवासी, आबू निवासी सभी भाई बहनों को निमंत्रण है, और सेवाधारी भाई बहनों के लिए बोर्ड पे लिख देंगे गाड़ी का प्रबंध कैसे होगा। सबको निमंत्रण है, कल पहला शिव बाबा का झंडा हम सब पीस पार्क में लहराएंगे, जिसके लिए सबको निमंत्रण है। और दूसरी सूचना है कि मधुबन निवासी भाई बहने ध्यान देंगे, मधुबन के समर्पित और ट्रायल के भाई बहने आज सुबह 11 बजे प्रातः 11 बजे मेडिटेशन हॉल में मिलेंगे, उनको गुजरात जोन की तरफ से या सौगात मिलेगी। और कल 4 तारीख को पीस पार्क में झंडे का कार्यक्रम है, 7 तारीख को ज्ञान शो में झंडे का कार्यक्रम रहेगा, जिसके लिए सबको निमंत्रण रहेगा। बाकी म्यूजियम और हॉस्पिटल में जब भी झंडे का कार्यक्रम होता है वहां पर स्थान छोटा होता है, वहां पर केवल आमंत्रित भाई बहनों को ही निमंत्रण दिया जाता है, उनको अलग से निमंत्रण दिया जाएगा। और 10 तारीख को पांडव भवन के आंगन में झंडा लहराया जाएगा। इसके साथ हर रोज कभी ट्रोमा में, कभी शिवमणि की ओर, कभी मनमोहिनी कम्प्लेक्स, हर रोज झंडे के कार्यक्रम चलेंगे शांतिवन में चारों तरफ। और 16 तारीख को ही लास्ट झंडा रहेगा, 14 तारीख को अव्यक्त बाप दादा से मिलने का, 15 तारीख को शांतिवन में कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर और प्रातः मुरली क्लास के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर झंडा रहेगा। झंडे के कार्यक्रम रोज के जहां होंगे वो आपको सुनाया जाएगा, कल का कार्यक्रम आपको बता दिया गया। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल फॉर्म सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल स्टे बैक आफ्टर अ मेडिटेशन, टूडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड। अच्छा, जो नीचे से वो हाथ खड़ा करे, आपको फिर से पक्का करा दें कि नीचे थोड़ा कारोबार चल रहा है, तो जो भी आए हैं सबको सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के ही बड़े डाइनिंग हॉल में खाना है, नीचे वहां स्थान नहीं है बैठने का। जो भी नीचे खड़े होंगे उन सबको ऊपर ही जाना होगा, ऊपर मीन्स ऊपर के डाइनिंग हॉल में जाना होगा, वहां जाकर के नाश्ता भोजन आदि स्वीकार करना होगा। नाउ वी सिट इन बाबा'स रिमेम्बरेंस, आफ्टर दैट डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल स्टे बैक, टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड। डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स प्लीज रेज योर हैंड, ओके वेलकम। इन नेक्स्ट ग्रुप सो मेनी एनसीसी एंड डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर कमिंग, देन यू विल सी बिग ग्रुप। अगले ग्रुप में बहुत से डबल विदेशी भाई बहने आ रहे हैं क्योंकि उनका भी विशेष टर्न है। अच्छा, ओम शांति।